ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, संसद में बजट पर चर्चा के संदर्भ में वित्त मंत्री के जवाब पर आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला की बातचीत।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पर चर्चा का जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया और आज राज्यसभा में। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी जी। संतोष तिवारी जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद आदित्य।
वित्त मंत्री ने कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो बिंदु फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, सरकार बहुत जोर दे रही है इस पर कि उन्होंने राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने में सफल रही है। हम इसी पर और आपसे टिप्पणी चाहेंगे, सरकार ने कैसे राजकोषीय घाटे को निरंतर कम किया है और आगे भी इसके लिए क्या लक्ष्य तय किया है।
देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी सरकार के लिए, और ये सिर्फ भारत के लिए या इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व में कोविड में जिस तरह से सरकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या जहां पर खर्चे करने थे वहां खर्चे करने के लिए लॉकडाउन हो गया था, और उसके बाद जिस तरह से भारत उभर कर कोविड के समय से आया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और जब वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो इंटरिम बजट में उन्होंने जितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था उससे भी कम करके 2024-25 में वो अब 4.9% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो रख रही हैं, और इस बात को मानती हैं कि ये 4.9% जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको वो और भी कम कर पाएंगे अगले साल। अगले साल जब वो कम करेंगी उस वक्त जो है 4.5% के इर्द गिर्द कहीं वो फिस्कल डेफिसिट लेके आ पाएंगी। तो अपने आप में जिस तरह से सरकार ने कोविड के बाद फिस्कल डेफिसिट का जो एक ट्रेजेक्ट्री है उसको नीचे की तरफ रखा है, बावजूद इसके कि कोविड के बाद उबरने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, कोविड के बाद आपको लोगों को, खासतौर से समाज के निचले तबके को और जो गरीब लोग थे उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत थी, उसमें सरकारी खर्चा जाता है, उद्योग काफी समय के लिए बंद था, उसको रिवाइव होने में टाइम लगा, उसके बावजूद अगर सरकार ने इतनी तेजी से फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है या जो ट्रेजेक्ट्री है उसको नीचे लाने का अगर 4.5% की तरफ इस तरह से अगर कदम बढ़ाया है, तो ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि जहां भारत ने अपने आप को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों की गणना में रखा हुआ है और अभी भी आगे बढ़ रहा है, विकास जो है उसको अपना बरकरार रखा हुआ है, उसके साथ साथ जो फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं वो अपने फिस्कल डेफिसिट की ट्रेजेक्ट्री को नीचे की तरफ ले जाके उसको भी बरकरार रखा है, और इस बात के लिए सरकार की जरूर तारीफ होनी चाहिए।
सरकार ने कैसे कोविड के बाद फिस्कल डेफिसिट को बरकरार रखते हुए कि हमें उसको भी नहीं बढ़ने देना है, साथ में हम पूंजीगत व्यय भी बढ़ाएंगे, तो इन दोनों का बैलेंस वो पूरी तरह से बरकरार रखा है। और जैसा कि वित्त मंत्री ने कल कहा भी कि कोविड के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है, कोविड के बाद से बहुत सारे देश हैं जो अभी भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप भारत की नेतृत्व को कैसे देखते हैं पिछले 4-5 सालों में, किस तरह से भारत आर्थिक तरक्की अभी भी कर रहा है जबकि दुनिया के कई देश अभी भी जूझते नजर आ रहे हैं।
इसमें ये समझने वाली बात है कि कोविड के दौरान कई देशों ने अपने अपने तरीके से कोविड से उबरने के लिए अपने उद्योग धंधों को, अपने लोगों को मदद करने के अलग अलग तरीके अपनाए। एक तो कि भारत ने कभी भी इस तरह से कोई जो खर्चा होता है या इस तरह से किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि सरकारी तंत्र पे, जो आर्थिक तंत्र है उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़े और जो आप कर्जे लेते हैं वो आपको बहुत ज्यादा लेना पड़े। तो शुरुआत में जब कोविड से भारत और पूरा विश्व जूझ रहा था उस समय में जहां लोगों को सपोर्ट की जरूरत थी उसको सरकारी तंत्र के खर्चों को काबू में रखते हुए जितना काबू में रखा जा सकता था सरकार ने खर्च किया और लोगों को उससे उबारा। उसके बाद जरूरत यह थी कि किसी भी तरह से निवेश जो है वो, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना था नहीं, निवेश कुछ तरह से आए इकोनॉमी में जिससे कि ग्रोथ रेट जो है वो बढ़े, और जिस तरह से बढ़ना, जैसे 7% के इर्द गिर्द अगर ग्रोथ रेट है जो वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था में है, तो उसको बरकरार रखने के लिए जो आपने कैपेक्स की बात की, जो 11.11 लाख करोड़ अभी है सरकार ने किया है, और ये स्तर जो है वो पिछले 3 साल से बरकरार है, ये इकोनॉमी को 7% या उसके इर्द गिर्द ग्रो कराने में मदद करता है। तो ये सरकार ने काम किया, तो ये बहुत अच्छी बैलेंसिंग है कि आप जो ग्रोथ रेट जिससे कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होके अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े रहे और तेज विकास दिखाए, उसको आपने पब्लिक जो कैपेक्स है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है उससे किया, और दूसरा अपने खर्चों को इस तरह से रखा कोविड से उबरने में जहां पर कि बहुत जरूरी थे वहां वो खर्चे किए, सरकारी जो आपके पास जो भी सुविधाएं या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसको आपने इस्तेमाल करके कोविड से बाहर निकाला लोगों को। लेकिन इसमें कहीं भी फिस्कल प्रूडेंस जो है उस बैलेंस को इस तरह से नहीं खोने दिया जिससे कि तेजी से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में दिक्कत आए, और यही वजह है कि अभी कोविड के बाद दो या तीन साल ही गुजरे हैं, दो साल गुजरे हैं खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्री इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगले साल जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम 4.5% के स्तर पर लेके आएंगे, जो कि इंडिया का ट्रेजेक्ट्री है। जिस तरह से विकास और जो खर्चे हैं और जो फिस्कल प्रूडेंस है इसकी बैलेंसिंग हुई है, वो इंडियन इकोनॉमी को जिसको बोलते हैं उसका बेनिफिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी अभी वो रीप कर रहा है, मतलब बेनिफिट मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी।
वित्त मंत्री ने एक और बात जो कही अपने बजट पर चर्चा के अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि अब हमारा जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहा है, उसकी एक वजह अभी हम चर्चा कर रहे थे पूंजीगत व्यय भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार व्यय बढ़ा रही है साथ में राजकोषीय घाटे को भी कम करते हुए और एक डिसिप्लिन दिखाते हुए वो चल रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब अर्थव्यवस्था इस तरह के दौर से गुजरती है उस समय में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब तक वापस आके या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इस स्तर पर नहीं पहुंच जाती है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम भी रहे तो चल जाए, तब तक सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर या कैपेक्स के थ्रू या अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने पॉलिसीज और जो कुछ भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको इस तरह से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है या और भी जो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शिपिंग है, पोर्ट्स है, इन सब जगहों पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे एक साइकिल तैयार होता है, जैसे आपने जिस जगह पर किया, जिस सेक्टर में किया वहां ग्रोथ होता है, वहां जॉब्स होता है, जिस जगह पे किया उसके इर्द गिर्द लोगों को जॉब्स मिलता है, वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसी तरह से इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर सरकार की नजर है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को पुश किया जाए जहां पर कि इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसको पुश देने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद मिले और इसका फायदा जो है वो लंबे समय तक इकोनॉमी को मिले। और यही जो अभी बजट में प्लान आप देख रहे हैं या पिछले तीन साल से जो आप देख रहे हैं जो कैपेक्स पर गवर्नमेंट का फोकस है वो इसी बात को देखकर किया गया है। अच्छी बात यह है कि ये सब करते हुए जैसे मैंने पहले भी कहा सरकार फिस्कल प्रूडेंस जो है जिसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं सरकार कर रही है जिससे कि जो आमदनी और व्यय की जो दूरी है वो कोई हाथ से निकले या वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए, फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाए जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बोझ या हमारे ऊपर इस तरह का बोझ बढ़े कि जो जरूरी खर्चे हैं उस पर भी प्रेशर आने लगे। ये बैलेंसिंग जो है ये इस बजट में या इसके पहले के बजट में भी आपने देखा होगा और ये दिख भी रहा है। अभी
वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं, जबकि यूपीए सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 2.3 करोड़ रोजगार ही दे पाई थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में, हम अगर थोड़ा पीछे जाएं और इसमें भी बजट पर चर्चा पे भी, उन्होंने कहा कि हमने एक 5 स्कीम वाली एक पैकेज लाए हैं, इसे प्रधानमंत्री का पैकेज कहा जाता है, 5 योजनाओं का, तो उन्होंने इस पर भी जोर दिया अपने बजट भाषण में और साथ में चर्चा पे भी उन्होंने बोला, तो हम इस पर और आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये जो पैकेज है 5 स्कीम का, 5 योजनाओं का, वो क्या है और कैसे रोजगार को बढ़ावा देगा।
देखिए, ये इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स जो 5 स्कीम की बात आपने कही ये एक अच्छी शुरुआत है। भारत और दूसरे देश भी, इकोनॉमी और इंडस्ट्री एक अलग दौर में अभी चला गया है जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स जो हैं, जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें जो जॉब्स होते हैं वो सारे जॉब्स जो है वो कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो पाई होता है या कंट्रीब्यूशन होता है, जितना मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसके परसेंटेज में, वो कम हुआ है हर जगह। सर्विस सेक्टर है, डिजिटल इकोनॉमी है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इस तरह के एरियाज इमर्ज कर रहे हैं, वो चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए या अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स और उससे रिलेटेड जॉब्स जो आ रहे हैं वो सब देख लीजिए आप। इससे क्या हुआ है, उद्योग जगत की जरूरतें जिन लोगों को वो नौकरी दे सकती है वो बदली है, जो जॉब लेने वाला है उसकी भी स्किलिंग दूसरे तरह से होने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है जॉब का वो बदला है। इस बजट में ये कोशिश की गई है कि जो इम्प्लॉयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको इंसेंटिव्स होता है वो दिया जाए ताकि वो फर्स्ट टाइम जो जॉब सीकर्स हैं उन लोगों को जॉब में लाएं या फिर उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करें। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन इम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों का, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, स्टार्टअप हो या किसी भी तरह की कंपनी हो, उनका अपने जो जॉब सीकर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में और वो जब जॉब ज्वाइन कर लें तो उनके डेवलपमेंट में जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही नए उभरते हुए जॉब मार्केट में एक्सपेंशन का स्कोप होगा। और जो बजट में अभी अनाउंसमेंट हुआ है ये इस दिशा में एक कदम है, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह के जो स्टेप्स हैं इसको अभी एक साल चलने के बाद इसको देखना होगा, इसको एनालाइज करना होगा कि इससे कितनी मदद मिल रही है जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट सीकर्स को और जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, क्योंकि ये जो स्कीम्स आए हैं इसके तहत आप ट्रांसपेरेंटली ये देख पाएंगे कि कितने जॉब्स इन स्कीम्स के तहत आए, क्योंकि अगर फर्स्ट मंथ का अगर पीपीएफ है या पीएफ है वो अगर सरकार दे रही है, एम्प्लॉयर्स जो है वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट बेसिस पे पता चलेंगी। आशा ये की जा रही है कि इस तरह का स्कीम और इस तरह का जो इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश इस बजट में की गई है ये एक्सपैंड करेगा, आगे बढ़ेगा आने वाले सालों में। बट इसमें फिर वही एम्प्लॉयर्स जो है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, छोटे एम्प्लॉयर्स, बड़े एम्प्लॉयर्स और सरकार, इन सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो ये स्कीम कितनी दूरी तक आगे चलती है उससे जॉब मार्केट पर या जो जॉब इकोसिस्टम है इंडिया का उस पर असर पड़ेगा जरूर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आने वाले सालों में जो रिजल्ट्स आते हैं इन स्कीम्स के और किस तरह से लोगों को फायदा होता है उसको देखकर इसको फाइन ट्यून करने की भी जरूरत पड़ेगी, बट शुरुआत जो है वो अच्छी है।
जी बिल्कुल, वित्त मंत्री ने बात की महंगाई की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महंगाई को जो वैश्विक औसत है उससे भी कम रखने में सफल रही है, तो सरकार के वो कौन से कदम रहे जो महंगाई को काबू करने में जिन्होंने मदद की?
देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का एक जो है वो इक्वेशन चलता रहता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है, जो वित्त मंत्रालय है या सरकार जो है उसके जिम्मे है विकास को। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 2-3 साल में जो रिजर्व बैंक और सरकार, कई बार ऐसा लगा कि दोनों में टकराहट है, यानी विकास और इन्फ्लेशन के बीच में टकराहट, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बीच में टकराहट है, उस टकराहट को दूर किया सरकार ने। इस सरकार ने और रिजर्व बैंक ने मिलकर विकास और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है इसमें एक मिलजुल कर चलने का रास्ता तैयार किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सरकार को विकास देखना है, रिजर्व बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है 4%± 2% में, और उसी के हिसाब से वो पॉलिसीज अपने बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट बनाते हैं। तो सरकार और आरबीआई अगर मिलकर साथ, मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सरकार और आरबीआई अगर मिलकर ये विकास और इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक बैलेंस बना लें और साथ मिलकर चलें, तो किसी भी दिशा में इन्फ्लेशन जा रहा हो, अगर बढ़ भी रहा है तो भी आप मिलजुल कर देख सकते हैं कि ये पॉलिसीज लाते हैं, जो पॉलिसी लाने की जरूरत है कंट्रोल के लिए वो सरकार लाए, और जो कदम उठाने की जरूरत है मॉनेटरी पॉलिसी में वो रिजर्व बैंक उठाए, और दोनों में तालमेल हो, इस तरह का तालमेल देखने को मिला है। तो मैं स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं बोल रहा कि इसने ये किया उसने वो किया इसलिए इतना गया नीचे गया, बट ये तालमेल जो है इसने एक रास्ता तैयार किया है जिसके चलते कि आप भारत को इन्फ्लेशन के तौर पर, इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो विश्व के दूसरे देशों से आप अच्छी जगह पे पाएंगे।
कृषि के बजट को सरकार ने पिछले 10 सालों में 5 गुना बढ़ाया है, तो आप कैसे देखते हैं कि बजट में कृषि क्षेत्र को जो आवंटन है वो कैसे बढ़ा है और इसका कृषि पर क्या असर पड़ रहा है, तो इस पर आपकी टिप्पणी।
देखिए, जहां तक बजट और नंबर्स का सवाल है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से कृषि जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो कार्य हो सकते थे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट से होगा वो सब नहीं हुआ। सरकार ने जाहिर तौर पर जो आंकड़े आपने बताए, सरकार ने अपनी तरफ से कृषि के विकास के लिए या कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्चे बढ़ाए हैं वो दिखता है, लेकिन जब तक इंडियन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होगा, जब तक आप गेहूं और चावल जो प्रीडोमिनेंटली इंडियन एग्रीकल्चर में किसान जो उगा रहा है उसको हटके आप जब तक डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स पर नहीं जाएंगे, आप जब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड इनोवेशन होता है वो नहीं लेके आएंगे, तब तक काम सरकार ने अपना काम किया है, बट इंडियन एग्रीकल्चर में मैं ये कहूंगा कि सरकार के काम के ऊपर ये रिसर्च एंड इनोवेशन, R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जिससे कि प्रोडक्टिव क्रॉप्स जो है वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ये सारी चीजें लाने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार अपनी तरफ से खर्चे करती है, तरह तरह की स्कीम लाती है, बट ये एक ट्रायंगुलर है, किसान, सरकार और प्राइवेट सेक्टर। किसान को प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या जो लोग रिसर्च एंड इनोवेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो किसानों की भलाई के लिए वैसे प्रोडक्ट्स बनाएं और वो लाएं, इन सब चीजों की और ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट के साइड से तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है।
जी बिल्कुल, संतोष जी आप स्टूडियो में आए और वित्त मंत्री के बजट पर चर्चा के बारे में इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे संसद में बजट पर चर्चा के संदर्भ में वित्त मंत्री के जवाब पर आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।